हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। 63. ऋषभ की बातों को अनसुना करते हुए शिविका ने उसे अंदर बुलाया। हाँ हाँ आओ, मैंने ही बुलाया था तुम्हें बात करने के लिए। इस तरह से पूछने की जरूरत नहीं है ऋषभ, और तुम कब से फॉर्मैलिटी करने लगे? ऋषभ ने फिर से ताना मारते हुए बात का विषय उसी दिशा में मोड़ते हुए कहा, अब जिनके साथ फॉर्मली बात करनी है उनके साथ एकदम फ्री होकर बात कर रही हो तो मुझे लगा शायद मुझे ही परमिशन लेनी चाहिए। शिविका ने फिर से विषय बदलने की कोशिश की। अब क्या मतलब है तुम्हारी इस बात का ऋषभ, और आज तुम ऑफिस नहीं जाओगे क्या? वैसे यहाँ आकर बैठो, पहले मुझे तुमसे बात करनी है। ऋषभ ने फिर एक के बाद एक शिकायतें करनी शुरू कर दी। हाँ, बात तो मुझे भी करनी है, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि शुरू कहाँ से करूँ। और वैसे भी कल आपने बेवजह उस हर्षिता के सामने मुझे डांटा। मैंने ऐसा भी क्या बोला था उससे? और अभी अपने असिस्टेंट से इस तरह कॉल पर बात, वैसे उसे यहाँ बुलाना इतना भी ज़रूरी नहीं था। शिविका फिर से अपनी तरफ से बात संभालने वाले अंदाज में उसकी बात का जवाब देते हुए बोली, अरे क्यों नहीं ज़रूरी है, और तुम इस तरह से क्यों बोल रहे हो? वैसे भी मैंने उसे काम के लिए ही बुलाया है। और ऋषभ ने उसे याद दिलाते हुए कहा, दी मुझे लगता है शायद आप भूल रही हो कि आपकी इंगेजमेंट हो चुकी है किसी और से। लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप अपने असिस्टेंट को पसंद करती हो तो मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो काफ़ी अच्छा लड़का है। ऋषभ की ये बात सुनकर शिविका हंसने लगी और उसने हंसते हुए कहा, अच्छा लड़का है वो, रियली? और तुम्हें कैसे पता चला ये बताओ? और मैं उसे पसंद करती हूँ, तुम कुछ भी बोलते हो ऋषभ। ऋषभ ने अपने मन में चल रही बात आखिर शिविका के सामने रखी। अरे लगता है आप दोनों को साथ देखकर, और सच कहूँ तो दी, मैंने आपको किसी और लड़के के साथ कभी इस तरह से इतना क्लोज और फ्रेंडली होते नहीं देखा। वैसे सच कहूँ तो कहीं से भी बॉस और असिस्टेंट नहीं लगते तुम दोनों, उससे कहीं। उसकी बातें सुनकर शिविका समझ गई कि अब वो इस बात को और टाल नहीं सकती और उसे ऋषभ को आखिर सच बताना ही चाहिए। इसलिए वो पहले हंसते हुए बोली, मुझे नहीं पता था कि मेरा भाई इतना ऑब्जर्व करता है, मुझे तो लगा था बस अपने में ही रहता है और जब देखो तब नशे में। ऋषभ मुंह बनाते हुए बोला, इतनी भी ड्रिंक नहीं करता मैं भी, बस कभी कभी जब कोई बात होती है तभी, या फिर पार्टी में दोस्तों के साथ। शिविका थोड़ा सा इरिटेट होते हुए बोली, हाँ हाँ ठीक है, मुझे सफाई देने की ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी करण वही लड़का है जिसके साथ मेरी एंगेजमेंट हुई है, इसलिए तो ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ऋषभ थोड़ी हैरानी से बोला, अच्छा सच में क्या? वैसे अपने असिस्टेंट के साथ ही एंगेजमेंट, सही है, बट आप तो बोल रही थी कि डैड ने सेलेक्ट किया आपके लिए, लेकिन अभी तो कुछ और ही लगता है। हैरान से ज़्यादा वो परेशान और कंफ्यूज लग रहा था ये बात बोलते हुए, क्योंकि उसे लगा था अगर असिस्टेंट के साथ एंगेजमेंट हुई है तो हो सकता है ये लव मैरिज हो, क्योंकि उसने कई बार शिविका और करण को साथ में नोटिस किया है और वो दोनों काफ़ी वियर्ड बिहेव करते हैं, एकदम किसी कपल जैसा। शिविका हल्के से उसके सिर पर मारती हुई बोली, मैंने कहा ना तुझसे इतना दिमाग लगाने और सोचने की ज़रूरत नहीं है, तो फिर क्यों तू? ऋषभ फिर से बच्चों की तरह मुंह बनाकर शिकायत करते हुए बोला, अरे दी ये कौन सी बात होती है, एक तो आपने इंगेजमेंट कर लिया, अपने भाई को बुलाया तक नहीं बताया, इकलौता भाई हूँ फिर भी ऐसा ट्रीटमेंट, और ऊपर से आप जब पूछ रहा हूँ तो भी इस तरह से मिस्ट्री और सस्पेंस क्रिएट कर रहे हो। शिविका उसकी शिकायत दूर करते हुए बोली, अरे ऋषभ बताया तो था मैंने तुझे, और वैसे भी करण हाँ शायद उसका नाम लेकर नहीं बताया था, लेकिन पता तो चल गया ना तुझे एंगेजमेंट के बारे में, और वैसे भी डैड ने ही सिलेक्ट किया था, वो तो बाद में कंपनी में इंटरव्यू के लिए आया, और सिर्फ इस वजह से तो मैं उसे रिजेक्ट नहीं कर सकती थी ना जॉब के लिए कि वो मेरा होने वाला मंगेतर है। ऋषभ ने फिर एक सवाल किया, अच्छा तो मतलब अब आपने करण को और उसके साथ बने अपने रिश्ते को पूरी तरह एक्सेप्ट कर लिया है ना? शिविका अब तक उसके सवालों से पूरी तरह इरिटेट हो चुकी थी, इसलिए उसने बेमन से कहा, अब ये किस तरह का सवाल है ऋषभ? ऋषभ ने भी उसी तरह से कहा, नॉर्मल सवाल ही तो पूछा है, अब आपको जवाब नहीं देना तो कोई बात नहीं, कसम मैं ऑफिस के लिए निकल ही रहा था लेकिन पता नहीं क्यों तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही, इसलिए सोच रहा हूँ आज ना जाऊँ तो कोई प्रॉब्लम? शिविका ने उसकी फिक्र करते हुए पूछा, क्या हुआ तेरी तबीयत को, ज्यादा ड्रिंक कर ली थी क्या कल रात गुस्से में, इसलिए ही हैंगओवर होगा शायद, और अगर कोई और बात है तो मैं डॉक्टर को कॉल करूँ क्या? ऋषभ बेशर्मी से उसकी बात का जवाब देते हुए बोला, अरे नहीं, ज्यादा नहीं, बस गुस्से में एक बॉटल ही खत्म की थी कल मैंने, लेकिन उसकी वजह से नहीं है। और आप लोगों से तो कुछ भी बताना बेकार है, सारी बात मेरी ड्रिंक पर ही आ जाती है, और मैंने कहा ना, मैं इतनी भी ड्रिंक नहीं करता अब। शिविका ने सवालिया नजरों से उसकी तरफ देखते हुए पूछा, क्यों, अब ऐसा भला क्या बदल गया है? और वैसे भी तुम मुझे विश्वास दिलाने की कोशिश मत ही करो ऋषभ। ऋषभ अपनी ड्रिंक करने की हैबिट को लेकर कोई भी बात या ताने और नहीं सुनना चाहता था, इसलिए उसने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, इससे अच्छा तो ऑफिस ही चला जाता हूँ मैं, बाय दी। इतना बोलते हुए ऋषभ बाहर निकला और उसने दरवाजे से करण को अंदर आते हुए देखा, तो वो दरवाजे पर ही रुक कर पीछे मुड़कर शिविका की तरफ देखते हुए बोला, दी आ गया आपका असिस्टेंट कम फियांसे। शिविका गुस्से से दांत पीसते हुए बोली, ऋषभ के बच्चे, इसीलिए ही नहीं बताया था मैंने तुझे, मुझे पता था तू मुझे परेशान करेगा इस बात को लेकर। शिविका को गुस्से में देखकर ऋषभ हंसते हुए वहां से भाग गया और फिर आगे आते हुए एकदम से करण के सामने आकर रुक गया। उसके इस तरह सामने आ जाने पर करण की अपनी जगह रुक गया और बोला, क्या हुआ, ठीक हो तुम या फिर आज भी नशे में ही हो? ऋषभ पहले ही अपनी ड्रिंक करने की बात को लेकर शिविका के मुंह से सुबह से इतना कुछ सुन चुका था और उस पर करण ने भी यही बात कर दी, तो वो कुछ ज्यादा ही ट्रिगर हो गया और गुस्से में बोला, क्या है यार, तुम सब मुझे नशेड़ी ही समझते हो क्या? मैं हर वक्त नशे में नहीं रहता, और वैसे भी तुम ऊपर कहाँ जा रहे हो? दी तो वहाँ नीचे वाले कमरे में ही है, पैर की वजह से ऊपर नहीं जा पाई ना बेचारी। करण ने एकदम नॉर्मल आवाज में कहा, अच्छा बताने के लिए थैंक्स ऋषभ। ऋषभ ने ऊपर से नीचे तक करण को देखकर चेक करते हुए कहा, हाँ हाँ ठीक है, कोई फॉर्मेलिटी नहीं, वैसे मुझे पता है तुम असल में कौन हो। उसकी ऐसी नजरों और बातों दोनों का ही मतलब करण को समझ नहीं आया, इसलिए उसने कंफ्यूजन से पूछा, असल में कौन हूँ मतलब? ऋषभ ने उसकी बात का जवाब दिया, वो तुम अपनी बॉस से पूछ लेना, मैं निकलता हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं है आज, वैसे भी लेट हो गया, देखो 12 बज गए हैं। इतना बोलकर वो लगभग भागते हुए वहाँ से दरवाजे की तरफ आ गया। ऋषभ की ऐसी अजीब बातें करण के बिल्कुल भी पल्ले नहीं पड़ी, इसलिए वो कन्फ्यूजन से अपना सिर हिलाते हुए वहाँ से उस कमरे की तरफ ही बढ़ गया जिस तरफ इशारा करके ऋषभ ने उसे बताया था कि वहाँ पर शिविका है। करण वहाँ पर पहुँचा तो शिविका बेड पर बैठी हुई कुछ सोच रही थी, और करण कमरे के अंदर आया तो उसका ध्यान भी उसकी तरफ नहीं हुआ, तो करण उसके एकदम सामने आकर खड़ा हो गया और उसके चेहरे के सामने अपना हाथ मिलाते हुए बोला, आंखें खोलकर सो रही हो क्या, या फिर मैं ही इनविजिबल हूँ जो नजर नहीं आ रहा तुम्हें? शिविका एकदम ही हड़बड़ाते हुए बोली, हाँ करण, तुम नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, तुम आगे आओ, नहीं मतलब जाओ, पहले काम का सामान लेकर आओ, सारा कुछ ऊपर ही रखा हुआ है, और पैर की चोट की वजह से। करण भी उसकी बात के जवाब में बोला, हाँ हाँ पता है मुझे सब कुछ, तुम्हारी पैर का फ्रैक्चर और बाकी चीज़ें भी, मुझे इस तरह बार बार एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, रुको तो मैं बस लेकर आता हूँ। वैसे काव्या कहाँ है, अपने रूम में है क्या? शिविका ने उसे बताया, नहीं अभी तो वो वापस ही नहीं आई है, 2 बजे वापस आएगी। वैसे तुम यहाँ काम करने आए हो या फिर काव्या से मिलने? करण भी लापरवाही से उसकी बात का जवाब देते हुए बोला, अब तुम जो भी समझ लो, लेकिन यहाँ आया हूँ तो काव्या से मिले बिना तो नहीं वापस जाऊँगा, इतना तो पता ही है तुम्हें। शिविका ने मुंह बनाकर कहा, हाँ हाँ ठीक है, सब पता है मुझे। ऑफिस के रास्ते में ऋषभ कार से ऑफिस आ रहा था, लेकिन थोड़ी दूर पहले ही कार खराब हो गई और ड्राइवर काफी देर से कार का बॉनेट ओपन करके उसके सामने खड़ा है और अपनी तरफ से जो कुछ हो सका सब ट्राई कर रहा है, लेकिन फिर भी वो कार रीस्टार्ट नहीं हुई। तो फिर ऋषभ भी कार से बाहर आ गया और बोला, नवीन कार ड्राइवर का नाम, भैया प्रॉपर सर्विसिंग करवा लो इस कार की, इस तरह रोज रोज बीच सड़क में खराब होगी तो इससे अच्छा तो मैं पैदल ही आना जाना शुरू कर दूँ। ड्राइवर ने सफाई पेश करते हुए कहा, अरे नहीं सर, मैं खुद ही हर हफ्ते से सर्विस के लिए लेकर जाता हूँ और पूरी तरह मेंटेन भी रखता हूँ, लेकिन अभी अचानक से पता नहीं क्या हो गया, कुछ समझ भी नहीं आ रहा। ऋषभ ने कार से अपना सारा सामान निकालकर हाथ में पकड़ते हुए कहा, जिसमें सिर्फ उसका मोबाइल फोन और सनग्लासेस ही हैं, तुम यहाँ पर खड़े होकर समझो इसमें क्या खराबी है, मुझे पहले ही देर हो रही है, आज घर से भी लेट निकला और सिर भी दर्द कर रहा है, इसलिए मैं तो ऐसे कार में बैठे नहीं रह सकता, मैं पैदल ही चला जाता हूँ यहाँ से, बहुत करीब है ऑफिस बिल्डिंग भी, सामने ही नजर आ रही है, तुम जाओ और शाम तक एकदम ठीक करवा कर लाना, फिर रास्ते में रुकने नहीं चाहिए ये, और अगर कोई खराबी हो तो मुझे पहले ही बता देना, मैं खुद ही घर चला जाऊँगा। ऋषभ की बातें सुनकर ड्राइवर के पास हाँ में सिर हिलाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा है। इतना बोलकर ऋषभ पैदल ही वहां से आगे आने लगा, लेकिन उसे ऐसा लग रहा है जैसे कि वो बिल्कुल भी चल नहीं पाएगा बुखार की वजह से, क्योंकि पहले ही उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, लेकिन फिर भी वो अपनी बहन की वजह से यहाँ ऑफिस आ गया। ऋषभ वहां से थोड़ा ही आगे चला था कि तभी एकदम से किसी ने पीछे से उसे आवाज लगाई। ऋषभ को एक बार थोड़ी दूर से आती हुई अपने नाम की आवाज सुनाई तो दी, लेकिन फिर भी वो वहां पर नहीं रुका। उसने बस एक बार पीछे मुड़कर देखा, लेकिन उसे कोई भी जाना पहचाना नजर नहीं आया, तो फिर वो वापस आगे अपनी ही बिल्डिंग की तरफ बढ़ने लगा।